परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोता, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम में से रोमियो नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी जानकारी प्राप्त हो रही है। इस पुस्तक के लेखक हैं संत पौलुस। श्रोताओं, इस पुस्तक के अंतर्गत विशेष रूप से विश्वास, आदर्श मसीह जीवन और मसीह कर्तव्य पर जोर दिया गया है, साथ ही छुटकारा यानी कि हमें पापों से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त हो सकती है इस विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर की निकटता में रहकर आनंदित हैं। मित्रों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में और विशेष करके उन मित्रों का मैं स्वागत करता हूं जो पहली बार इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों रोमियो की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पापी के उद्धार संबंधित वचन थे और अब हम पवित्र जनों के शोधन के बारे में देखेंगे। उद्धार पाने पर हमें धर्मी ठहराया जाता है, परंतु परमेश्वर मनुष्य को धर्मी ठहराने से अधिक कुछ करना चाहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर के पवित्र सिंहासन के समक्ष, स्वर्ग के वकीलों के समक्ष भटका हुआ पापी अब धर्मी ठहराया गया है, परंतु उसका मन बदला नहीं है। मेरे मित्रों, यदि आप सोचते हैं कि परमेश्वर पापी को पाप में ही पड़ा रहने देना चाहता है तो आप गलत हैं। परमेश्वर हमें ऐसे मनुष्य बनाना चाहता है जो हमें होना है। अतः परमेश्वर के पास हमारे लिए उद्धार के साथ एक योजना भी है जिसके द्वारा वह पापी को धर्मी ही घोषित नहीं सच में धर्मी बनाना चाहता है। अर्थात परमेश्वर एक ऐसा मार्ग उपलब्ध कराता है जिसमें पापी अनुग्रह में विकास करके शुद्ध अर्थात परमेश्वर के लिए पृथक हो जाए। मेरे मित्रों, इस अध्याय के शेष भाग का शीर्षक है संभावित पवित्रीकरण। अब मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप इसे समझने में कठिनाई का सामना करेंगे, वरन स्वीकार करने में भी कठिनाई का सामना करेंगे। संभावित पवित्रीकरण में आदम और मसीह की संयुक्त प्रधानता है। आइए हम देखें आदम की प्रधानता। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 12 पद में लिखा हुआ है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। मेरे प्रियो, इस पद का मेरा अनुवाद प्रस्तुत करने की अनुमति दीजिए। इससे इस पद का अर्थ कुछ अधिक स्पष्ट होगा। अतः एक उद्धारक द्वारा सबका उद्धार, जिस प्रकार एक मनुष्य के कारण पाप संसार में आया सिद्धांत स्वरूप और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस प्रकार मृत्यु व्याप्त हो गई क्योंकि उसका आधार था कि सब ने पाप किया है। अब हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जिस पाप की हम चर्चा कर रहे हैं वह आदम का पाप है, आदम का आदि पाप। उसका दूसरा और तीसरा और चौथा पाप नहीं है। आदम की वाटिका में आज्ञा उल्लंघन करने के द्वारा उसका पहला पाप, जिसके कारण उसके वंशजों को मृत्यु आई। मेरे प्रियो, अब यह मुझे अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दे को समझने के लिए पुनः वही ले जाता है जैसे हम कह चुके हैं कि आप और मैं 4 रूप में पापी हैं। पहला है, हम पापी हैं क्योंकि हम पाप के काम करते हैं। दूसरा, हम स्वभाव से ही पापी हैं। और तीसरा, हम पाप की दशा में हैं, जो संपूर्ण मानव जाति को पापी घोषित किया है। चौथा है, अंत में हम दोषारोपण के द्वारा पापी हैं। आदम मानव जाति का प्रतीक है क्योंकि वह मानव जाति का सिर था। यह आदम की संघीय प्रभुता के आधार पर ही है कि परमेश्वर मसीह की संघीय प्रभुता के द्वारा मसीह में विश्वास करने वालों का उद्धार करता है। जी हाँ, इसी को धर्म विज्ञान विशेषज्ञ संघीय प्रभुता कहते हैं। आदम और मसीह दोनों ही मानव जाति के प्रतिनिधि हैं। आदम मानव जाति का प्राकृतिक सिर है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैंने एक विशाल पोस्टर देखा जिसमें मुझे अत्यधिक रुचि उत्पन्न हुई। उसमें लिखा था, मेरे पूर्वज मनुष्य थे, आपके पूर्वजों के लिए क्षमा कीजिए। इसे मसीही होने का विचार मिट्टी में मिल जाता है। परमेश्वर के वचन में विश्वास करना और विकासवाद के सिद्धांत को भी मानना आदम मानव जाति का सिर है। पौलुस यहाँ पर यही कह रहा है, वह प्राकृतिक रूप से सिर है। उसके एक ही आज्ञा के ना मानने के कारण उसकी संपूर्ण जाति को पाप में गिरा दिया। हम सब आदम के पाप के कारण पापी हो गए हैं। मेरे मित्रों, पहले हम यह देखेंगे कि इसका अर्थ क्या नहीं है। यह उस तथ्य से संदर्भित नहीं कि हम में आदम का पापी स्वभाव वंशानुक्रम में आया है। यह सच है कि मुझ में मेरे पिता से पाप का स्वभाव आया है और उनमें उनके पिता से, और इसी प्रकार एक पीढ़ी से पीढ़ी में आया है। मैंने यह स्वभाव अपने बच्चों को दिया और उनके माध्यम से नाती पोतों को भी दिया गया है। मेरा पहला बेटा ऐसा प्यारा बच्चा है कि मुझे मनुष्य की पूर्ण भ्रष्ट अवस्था पर संदेह होने लगा था, परंतु ज्यों ज्यों वह बड़ा होने लगा है और बड़ा हो रहा है, त्यों त्यों वह इस भ्रष्ट प्रकृति का प्रदर्शन करने लगा है। मेरा दूसरा पुत्र अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का है। अब मैं फिर से मनुष्य की पूर्ण भ्रष्ट अवस्था पर विश्वास करने लगा हूँ। मैंने इन दो बच्चों में ऐसे स्वभाव का प्रदर्शन देखा है जो उन्होंने मेरे विचार में अपनी दादी से पाया है। यद्यपि आप में और मुझ में पापी स्वभाव है और हम उसे अपनी संतान को देते हैं, यह पद उस सत्य के संदर्भ में नहीं है। मेरे प्रियो, इस पद में यह भी लिखा है, सबने पाप किया। इसका अर्थ यह नहीं कि हम पापी कर्मों के दोषी हैं। निसंदेह हम दोषी हैं, परंतु इस पद का अभिप्राय यह नहीं है। अब हम देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है। यह पद उस तथ्य का संदर्भ देता है, हम अपने मूल पिता से कैसी गंभीरता से जुड़े हुए हैं। मानवीय स्वभाव में ढलने से पूर्व, पाप करने से पूर्व, जन्म लेने से पूर्व हम आदम में पापी थे। संभवतः आपको यह स्वीकार्य न हो, परंतु परमेश्वर कहता है कि ऐसा ही है। हम इसे इब्रानियों के पत्र 7:9 में देखते हैं। लिखा है, तो हम यह कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो दसवां अंश लेता है अब्राहम के द्वारा दसवां अंश दिया। लेवी के जन्म से युगों पूर्व उसने मलकीसीदेक को दसवां अंश दिया। वह कैसे इस काम को कर पाया? इब्रानियों के पत्र 7:10 में लिखा है, क्योंकि जिस समय मलकीसीदेक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय वह अपने पिता की देह में था। इसी प्रकार आदम का पाप भी हम में दोषारोपण उत्पन्न कर गया। आदम ने जो किया वह हमने किया। परमेश्वर हम सबको अदन की वाटिका में रख सकता था और हमें भी आदम की नाई परख सकता था। क्या आप सोचते हैं कि आप अपने पापी स्वभाव में आदम से कुछ अच्छा कर सकते हैं? उससे अच्छा जो उसने पाप रहित अवस्था में किया था, मेरे विचार में यह संभव नहीं है। उचित होगा कि हम इस तथ्य को स्वीकार कर लें कि आदम की आज्ञा ना मानने के कारण, एक कार्य के कारण हम सब पापी हो गए हैं। मेरे प्रियो, अब मैं आपको एक प्रासंगिक उदाहरण देता हूँ। मेरे पिताजी किसी कारणवश अपने गांव को छोड़कर किसी अन्य शहर में जाकर बस गए। अब मेरे पिता जो कर रहे थे, मैं भी वही कर रहा था। उसने अपना गांव छोड़ा तो मैं भी छोड़ दिया, क्योंकि मैं अपने पिता की देह में था। इसी प्रकार आदम का पाप मुझ में आया। हम देख चुके हैं, मसीह की धार्मिकता उसकी मृत्यु के द्वारा हम में रोपित की जा चुकी है। मसीह एक नई जाति का सिर है, एक नई उद्धार प्राप्त मानवता जो मसीह की देह है। मेरे प्रियो, एक नई सृष्टि। किसी गीतकार ने बहुत ही उत्तम गीत लिखा है, कलीसिया की एक नींव है, उसका प्रभु मसीह यीशु है। उसकी नई सृष्टि जल और वचन के द्वारा है। कलीसिया एक नई सृष्टि, एक नई जाति है। पौलुस पहला कुरिन्थियों के पत्र 15:45 उसके 45-47 में इसी बात को कहता है। ऐसा ही लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय था। अब तीसरा आदम उदय नहीं होगा क्योंकि मसीह अंतिम आदम है। तीसरा, चौथा और असंख्य मनुष्य तो होंगे क्योंकि मसीह दूसरा मानव है, परंतु दूसरा आदम नहीं है, वह अंतिम आदम है, वह एक नई जाति का सिर है। यह एक मुख्य बात है। मेरे मित्रों, जब हम इस भाग का अध्ययन करते हैं तो हम एक बड़ी अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति को देखते हैं। अतः से पौलुस का अभिप्राय है, हमने आदम के द्वारा जो खोया उससे कहीं अधिक हमें मसीह में प्राप्त है। पद 9 में लिखा है, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। और पद 10 में, क्योंकि बैरी हो जाने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों नहीं पाएंगे। मेरे मित्रों, इस भाग में अतः और क्योंकि शब्दों की बहुतायत है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 21 और 22 पद में लिखा है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। ध्यान दीजिए, मृत्यु आदम के द्वारा आई, और यदि आपको प्रमाण चाहिए कि आदम का पहला पाप प्रतीकात्मक कार्य था, तो सोचिए कि एक शिशु जिसने पाप नहीं किया क्यों मरता है, क्योंकि वह आदम की जाति से है। आदम में सब मरते हैं। परमेश्वर ने वास्तव में मनुष्य को मरने के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर के पास मनुष्य के लिए अधिक उत्तम वस्तुएं थी और आज भी है। मेरे मित्रों, अब इस विचार के साथ हम पद 13 पर ध्यान देंगे। आइए हम पढ़ें रोमियो के पत्री 5 अध्याय उसका 13 पद, क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, आदम से लेकर मूसा के समय तक पाप संसार में था, परंतु उसमें पाप अपराध नहीं था, वह केवल परमेश्वर से विद्रोह था। मेरे विचार में यही कारण था कि परमेश्वर ने कैन को मृत्यु दंड नहीं दिया जब उसने अपने भाई की हत्या की थी। मैं इससे बढ़कर अन्य कोई कायरतापूर्ण कार्य नहीं देख पाया हूँ। उस समय तक परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी थी, जिसे हम निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय के 13 पद में पढ़ते हैं कि तू हत्या मत करना। सच तो यह है कि परमेश्वर ने कैन की रक्षा हेतु उस पर एक चिन्ह डाल दिया था। आगे चलकर आप देखेंगे कि कैन के पुत्रों में से एक लेमेक किसी मनुष्य की हत्या करता है, जिसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 23 और 24 पद में देखते हैं। लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और सिल्ला मेरी सुनो, हे लेमेक की पत्नियों मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। मेरे मित्रों, इस प्रकार आप देखते हैं कि लेमेक के पास हत्या करने का कारण था। नूह के युग में जिस पीढ़ी का जल प्रलय से नाश हुआ वह पीढ़ी पाप में मग्न थी, वे असाध्य महाभ्रष्ट थे। उत्पत्ति 6 अध्याय के 5 पद में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। इनमें से एक ने भी 10 आज्ञाओं में से एक का भी उल्लंघन नहीं किया था, क्योंकि उस समय 10 आज्ञाएं नहीं थी। उनको दंड इसलिए दिया गया कि वे पापी थे। मेरे मित्रों, यहाँ अन्य जातियां जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना उनके भटकने के प्रश्न का उत्तर है। सब मनुष्य भटकी हुई जाति के हैं। आपके और मेरे लिए यह एक सच स्वीकार करना कठिन होगा, परंतु आप और मैं इसी भटकी हुई जाति के जन्मे हैं। हम अभिराम मनुष्य रूपवान नहीं हैं। हम विकास की प्रक्रिया से उत्पन्न नहीं हैं, जो अधिकाधिक अच्छे की ओर ऊपर उठते जा रहे हैं। आप और मैं एक भटकी हुई जाति हैं। हमें उद्धार की आवश्यकता है। मनुष्य के विचार ही परमेश्वर से अलग हैं। मेरे मित्रों, अब कोई कहेगा, ऐसे तो परमेश्वर आभारी होगा कि सबका उद्धार करे। जी नहीं, वह आभारी नहीं है। उदाहरण के रूप में देखें, आप एक दलदल भरी झील पर जाते हैं जहां कछुए हैं। आप एक कछुए को पकड़कर उड़ना सिखाते हैं। अब यह कछुआ झील में जाकर अन्य कछुओं से कहता है, क्या तुम लोग उड़ना सीखने के इच्छुक नहीं हो? मेरे विचार में वे उसका ठड्डा करके कहेंगे, नहीं, हम यही अच्छे हैं, हम उड़ना नहीं सीखेंगे। आज भटके हुए मनुष्य की यही दशा है। मनुष्य को उद्धार पाना अच्छा नहीं लगता है। वे परमेश्वर से दूर हैं, भटके हुए हैं। यह महान सत्य हमारे मानसिकता पर आसानी से नहीं बैठता है, क्योंकि हमारा स्वभाव भ्रष्ट है। हमें यह सोचना अच्छा लगता है कि हम विशिष्ट जन हैं, परंतु हम हैं नहीं। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको भी सोचने की आवश्यकता है। हम रोमियो के पत्र 5:14 पद में आगे पढ़ते हैं, तो भी आदम से लेकर के मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम के अपराध की नाई जो उस आने वाले का चिन्ह है पाप न किया। पौलुस मृत्यु को मानव स्वरूप जीवंत दर्शाते हुए कहता है कि सच में मृत्यु ने आदम से लेकर के मूसा के युग तक एक राजा की नाई राज किया है। यद्यपि मनुष्य ने उस युग में 10 आज्ञाओं में से किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था, क्योंकि उस समय व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, वह फिर भी पापी था। मेरे मित्रों, धर्मशास्त्र में मृत्यु को 3 रूप में प्रकट किया गया है। शारीरिक मृत्यु अर्थात आत्मा द्वारा देह का त्याग, यह मृत्यु आदम के पाप के कारण आई थी। दूसरी मृत्यु आत्मिक मृत्यु, परमेश्वर से विद्रोह एवं अलगाव, यह स्वभाव हम में आदम से आया है। हम परमेश्वर से विलग हैं और अपराधों एवं पापों में भरे हुए हैं। देखिए इफिसियों के पत्र 2:1 पद में यह धर्मशास्त्र में व्यक्त चित्रण है। अब तीसरी मृत्यु है अनंत मृत्यु, यह धर्मशास्त्र में व्यक्त तीसरी मृत्यु है। परमेश्वर से अनंत कालीन संबंध विच्छेद, जिसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21:8 पद में पढ़ते हैं, जब तक मनुष्य की मुक्ति न मिले वह अनंत मृत्यु के अधीन है। आइए अब हम आगे देखते हैं मसीह की प्रभुता। रोमियो की पत्री 5:15 पद में हम पढ़ते हैं, पर जैसा अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ बहुतेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। मित्रों, आज मसीह में हमारे पास भरपूरी है। हम अदन की वाटिका से भी अधिक अद्भुत किसी परिदृश्य की प्रतीक्षा में हैं। इब्रानियों के पत्र 11:13 पद में लिखा है, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञाएं की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। तब हम रोमियों के पत्र 5:16 पद में पढ़ते हैं, और जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत तेरे अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। मेरे मित्रों, मैं समझता हूँ कि यह कठिन वचन है, वरन सर्वाधिक कठिन वचनों में से एक है। आसान शब्दों में, एक अपराध के कारण संपूर्ण मानव जाति पाप में गिराई गई और आज्ञा पालन का एक काम क्रूस पर मसीह यीशु की मृत्यु भटके हुए मनुष्यों के लिए उद्धार संभव बनाती है। हम रोमियों के पत्र 5:17 पद में आगे पढ़ते हैं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुताय से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। पद 14 में पौलुस कह चुका है कि मृत्यु एक राजा की नाई राज करती है। एक मनुष्य के एक ही पाप के कारण मृत्यु को सिंहासन पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आदि पाप एक ही काम ने संपूर्ण मानव जाति को पाप का भागी बनाया। यहाँ पौलुस एक और राज्य का उल्लेख करता है जो मृत्यु के राज्य से अधिक उत्तम है। मित्रों, यह जीवन का राज्य है। यह मृत्यु के राज्य के निवासियों के लिए एक निमंत्रण है। अनुग्रह की अधिकता के कारण मनुष्य को केवल इसे ग्रहण करना है। जीवन के राज्य का राजा मसीह यीशु है और उसी के द्वारा वरदान प्राप्त होते हैं। रोमियो के पत्र 5 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। यह पाप के दोषारोपण और धार्मिकता के रोपण का मूल सिद्धांत है। यह आदम और मसीह की संघीय प्रभुता का सिद्धांत है। हम रोमियो 5 अध्याय उसके 19 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। जी हाँ, अब पौलुस संघीय प्रभुता का वाद समाप्त कर रहा है, अतः उसका सारांश देता है। आदम के एक पाप ने सब मनुष्यों को पापी बना दिया, वरन पाप के कर्म के दोषी बनाया। मसीह की आज्ञाकारिता, उसकी मृत्यु और उसका पुनरुत्थान परमेश्वर के लिए मसीह में विश्वास लाने वाले पापियों को धर्मी घोषित करना संभव बनाती है, अर्थात धर्मी घोषित करती है। रोमियो के पत्र 5 अध्याय के 20 पद में लिखा है, और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। परमेश्वर ने व्यवस्था के साथ बलि चढ़ाने के अनुष्ठान भी दिए थे। मसीह ने आकर इस व्यवस्था को पूरा किया। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने भटकी हुई मानव जाति को पाप के दोष से मुक्ति पाने का अवसर प्रदान किया, परंतु यह मुक्ति पापी स्वभाव से मुक्ति नहीं थी। आप में और मुझ में यह पापी पुराना स्वभाव आजीवन हम में बना रहेगा। हम रोमियो के पत्र 5 अध्याय के 21 पद में पढ़ते हैं कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। ध्यान दें, जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया। जी हाँ, आप और मैं जिस संसार में रहते हैं वह पाप के राज्य के अधीन है। क्या आप जानना चाहते हैं कि पृथ्वी का राजा आज कौन है? धर्मशास्त्र कहता है कि शैतान यहाँ का राजकुमार है। वह इस पृथ्वी पर विचरण करता है कि देखें किसको शिकार करें। पहला पत्रस की पत्री 5 अध्याय के 8 पद में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको कब फाड़ खाए। जी हाँ, पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, इसी कारण कब्रिस्तानों में स्थान नहीं है। वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। वह एक जाति को बुला रहा है, भटकी हुई जाति में से। वह कछुए को उड़ना सिखा रहा है, तथापि कछुओं का स्वभाव उड़ना नहीं चाहता। मनुष्य परमेश्वर से विच्छेदित है, उसमें पाप का स्वभाव है। अब परमेश्वर एक भ्रष्ट जाति को उद्धार दिलाना चाहता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर की धार्मिकता की अनिवार्यताएं मसीह यीशु की मृत्यु में पूरी हो गई है। यह राज्य मसीह के क्रूस पर पूरा और सुदृढ़ बना हुआ है। अन्य सब आधार ढह जाने वाली रेत है, कण है, बालू है। विश्वास करने वाले पापी को आज अनंत जीवन प्राप्त है। अंतिम आदम के साथ एक हो जाने के द्वारा पुनरुत्थित एवं महिमामय उद्धार करता जो हमारा मसीह है, यह उद्धार प्राप्त पापी का शोधन संभव बनाता है। जी हाँ, आज वह चाहता है कि आप भी उद्धार प्राप्त करें, आप भी प्रभु की निकटता में उस आनंद को महसूस करें। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आपका जीवन किस प्रकार से है। आज वह चाहता है कि आप जो भटके हुए हैं, जो अपने संसार की बुराइयों में उलझे हुए हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास आ जाएं। आप उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, क्योंकि उसने आपके लिए अपने जीवन को कुर्बान किया है। उसने क्रूस पर अपनी जान दी है ताकि आप बच जाएं। आपकी गुनाहों की सजा उसने आपको माफ कर दिया है। बस आप उससे क्षमा मांगे, अपने जीवन में उसे जगह दें। मेरे मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने इस बात को जान लिया है कि एक आदम के द्वारा पाप इस जगत में आई, लेकिन दूसरे आदम के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार जगत में आया। और आज मेरे लिए और आपके लिए मौका है कि हम उसे ग्रहण करें। आज के इस अध्ययन में हमने बहुत कुछ सीखा है। प्रभु आप सबकी सहायता करें, आपकी मदद करें कि आप और बलवंत हों। मित्रों, हमारे अगले अध्ययन का विषय भी यही होगा, इसलिए आप अगले अध्ययन में भी अवश्य ही शामिल हों। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।